मुश्किल अल्फाज की वजाहत और उनके मादा। आप देखिए आयत नंबर 10 में लफ्ज आया है जागातिल अबसारु। जागा पढ़ी चुकी हैं, क्या है जा या गैन, जैग से है। हाँ, ला तुज़िग़ क़ुलूबुना, और जैग का लफ्ज जो है ये टेढ़ के लिए आता है ना, जागा जो है वो टेढ़ा होना, और जागल बसर जैसे आंखें जो है वो सीधा देखने की बजाय फिर टेढ़ा देखने लगे, है ना, टेढ़ी हो जाए आंखें। और असल में ये मुहावरा है, और मुहावरा किस लिए इस्तेमाल हुआ है, जागतिल अबसारु, कि जब आंखें जो हैं वो पथरा जाएं, और जब आंखें जैसे जो है पथरा जाती हैं तो इंसान की कैफियत क्या हो जाती है कि ऐसा महसूस होता है कि इंसान जो है वो टिकटिकी बांध कर कहीं देख रहा है, किसी और ही तरफ देख रहा है। तो ये जो लफ्ज है जैग का राहे हक से इनहराफ करने के लिए भी आता है। फामल्लदीन फी कुलूबिहिम ज़ैगुन फयत्तबिऊन मा तशाबहा मिन, तो फिर जिन लोगों के दिलों में कजी है वो उनमें से मुतशाबहात के पीछे लगे रहते हैं। ज़ैग गोया के मादी तौर पर भी और हिस्सी तौर पर भी ये ज़ैग का लफ्ज जो है वो इस्तेमाल किया जाता है कि दिल का टेढ़ा हो जाना, है ना। और यहां पर जो है वो नजर के लिए आया है, क्योंकि आंखें तो नजर आती है ना, तो जागल बसर के मानी है नजर का थकना, निगाह ने गलती की, एक तरफ को हट गई। जैसे मसलन आप गाड़ी चला रहे हैं, आप सीधा देख रहे हैं, लेकिन लम्हे भर को क्या होता है कि जैसे नजर टेढ़ी हो गई, तो आप थोड़ी सी भी इधर हुआ तो आप क्या है कि गाड़ी किसी के साथ जो है वो लग जाती है। तो ये लफ्ज जो है मादी तौर पर भी और मानवी तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है, जैसे जाविया निगाह, नुक्ताए नजर, उसमें तब्दीली, टेढ़, इनहराफ के लिए। ये मुहावरा है जागतिल अबसार, इसको आप याद कर लें, जागतिल अबसार। और दूसरा मुहावरा क्या है, वह बलागतिल कुलूबुल हनाजिरा। बलागा के मानी होते हैं पहुंचना, और कुलूब जो है ये कल्ब की जमा है। अब कुलूब पहुंच गए, क्योंकि बहुत से ग्रहों की बात हो रही है, तो दिल पहुंच गए। दिल कहां पहुंचे, अल हनाजिरा, तो हा नून जीम रा। तो ये लफ्ज जो है ये चार हर्फी है, और ये कहते हैं नरखरा। नरखरा क्या होता है, सांस की नाली, सांस की नाली के लिए आता है। और अब क्या है कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जो दिल थे वो सांस की नाली तक जो है वो पहुंच गए, गोया के कलेजे जो है वो मुंह को आ गए। और ये लफ्ज भी जो है ये क्या है, ये मुहावरा है। और ये लफ्ज या ये मुहावरा जो है ये कब इस्तेमाल किया जाता है, गम की इंतहाई कैफियत के लिए। क्योंकि आप देख लें कि हनाजिर जो है क्या इसके मानी है कि अब आप देखें कि एक है कि दिल, अब दिल जो है हनाजिर तक पहुंच गए, गले तक पहुंच गए, नरखरे तक, सांस की नाली तक। तो नरखरा किसे कहते हैं कि बेरूनी जानिब से हलकूम का जो सिरा है बाहर की तरफ से, ये इसके लिए ये जो है ना इस्तेमाल किया जाता है। और इसकी जमा जैसे हंजरा, हंजरा तू जो है ये नरखरा को कहते हैं, और हनाजिर जो है वो इसकी जमा है। तो अब तुम्हारे जो दिल थे वो बिल्कुल ही सांस तक की नाली तक पहुंच गए, हनाजिर तक पहुंच गए। फिर अगला ये भी मुहावरा है, वतजुन्नूना बिल्लाहि जुनूना, और उस वक्त जो थे तुम गुमान करने लगे अल्लाह के बारे में, गुमान करना। तो आप ये बात भी पहले पढ़ चुकी हैं कि जोए नून, नून के मानी क्या होते हैं, गुमान करना, और फिर इसके बाद जब बा जाए तो फिर मानी क्या होते हैं, हाँ जैसे एक यकीन के से मानी जो है वो पैदा होने लगते हैं। वतजुन्नूना बिल्लाहि जुनूना, के तुम्हारा अल्लाह के बारे में गुमान जो था یقین کا گمان تھا. گویا کہ انسان جو ہے وہ بہت زیادہ, جیسے کیونکہ یہاں پہ جمع بھی آیا ہے نا, ظنون, ایک ظن نہیں, تو تمہارا جو گمان تھا وہ طرح طرح کا گمان تھا, بہت سا گمان تم اللہ کے بارے میں کرنے لگے. پھر آیت نمبر جو ہے اگر آپ دیکھیں تو آیت نمبر ہے, آیت نمبر 14 میں لفظ ہے طلب باسو, لام با سا, معنی کیا ہے اس کے؟ انتظار میں, ہاں کسی کے انتظار میں ٹھہرنا. تو یہاں پہ کیا, وما طلب باسو, اور نہیں وہ ٹھہرے, ہے نا, انہیں کوئی تامل نہیں ہوتا, وہ کسی کا انتظار نہیں کرتے. پھر آیت نمبر 18 میں آئیں تو الموقین ہے, عین موقاف اس کا روٹ ہے, اور موقین موق کی جمع ہے. یہاں پہ یہ اسم فاعل استعمال ہوا ہے, اور عین موقاف جو ہے اس کے معنی ہوتے ہیں کہ لوگوں کو اچھے کاموں سے روکنا, ہے نا, لوگوں کو اچھے کاموں سے روکنا, اس کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے. روکنا, باز رکھنا, ہٹانا, سب کے لیے یہ لفظ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے کہ کسی کو روکا جائے یا پھر اس کو جو ہے وہ ہٹایا جائے. تو اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر یہ اسم فاعل استعمال ہوا ہے, تو یہ بھی ہو سکتا تھا کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے کوئی اور لفظ استعمال کرتے نا, کیونکہ روکنے کے لیے قرآن میں منع بھی آ سکتا ہے, نہا بھی آ سکتا ہے, لیکن یہاں پہ اوا کا آیا اور الموقین روکنے والے. تو پھر اس کے معنی کیا ہیں کہ بے فیض انسان, ایسا انسان جو لوگوں کو بھلائی کے کاموں سے روکتا ہے, عام روکنا نہیں ہے, بھلائی کے کاموں سے روکنا ہے. اور پھر اگر آپ دیکھیے تو اس کے بعد ہمیں لفظ ملتا ہے اور وہ کیا ہے, حلما, حلما, اور حلما جو ہے حالامیم, اس کے معنی ہوتا ہے کہ آنا, لانا, اور یہ لفظ جو ہے پکار پکار کر بار بار کہنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. آنا, لانا, اور بار بار پکار پکار کر کہنے کے لیے یہ لفظ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے. یہ لفظ جو ہے یہ بہت کم استعمال ہوا ہے, کیونکہ آپ دیکھیں آنے کے لیے قرآن میں 5 لفظ ہیں, ایک ہے جا, دوسرا ہے عطا, تیسرا ہے ہیتا, ہیتا لکھ آپ پڑھ چکی ہے نا, پھر چوتھا ہے حلما, پانچواں ہے تال. اور حلما اور تال جو ہے وہ آپ پڑھیں گی یہی 21 پارے میں ہی, ایک تو یہاں پہ آپ نے حلما پڑھ لیا اور جو اگلا چند آیتیں رہتی ہیں اس میں تال تا کا لفظ جو ہے آپ پڑھیں گی. تو حلما یہ اسماء الافعال سے ہے, پکار کر کسی کو بلانا, پکار پکار کر کسی کو بلانا, بار بار کہنے کے لیے آتا ہے. اور جو تال ہے عین لام واؤ سے ہے, اور اسی صورت کے اندر یہ استعمال ہوا ہے, کہاں پہ استعمال ہوا ہے یہ دیکھیے, صورت احزاب ہے اور اس میں آیت 28 میں فتعالینا, فتعالینا, اور اس کے معنی کیا ہوتے ہیں, بلندی, بلندی اور تال, یعنی کسی کو بلند جگہ یا بلند مقصد کی طرف بلانا, عام بلانا نہیں ہے, کسی کو تعظیم سے بلانے کے لیے یہ لفظ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے. اور ہیتا کا چیخ کر پکارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے نا, وغلقت الابواب وقالت ہیتا لک, کب ہوا تھا یہ, سورت یوسف میں یہ تھا. خیر, اچھا ہم آگے چلتے ہیں اور آگے ہمیں لفظ ملتا ہے اشحتن, شین ہا ہا, اور اس کے معنی ہیں, یہ لفظ جو ہے یہ بخل کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. شہیہن کی یہ جمع ہے, شہیہن کی جمع ہے اشحتن, حریص لوگ, किसी चीज पर जो है वो टूट पड़ने वाले लोग, तो आम लोग नहीं बल्कि अब आप देखें कि कुरान मजीद में बुखल के लिए और लफ्ज भी तो इस्तेमाल हुए ना, कोई और भी तो आ सकता था, तो यहां पर जो है अशेहतन लफ्ज जो है वो इस्तेमाल किया गया है। तो यहां पर फिर इससे मुराद क्या है, क्योंकि बुखल करने के लिए 8 लफ्ज कुरान में आए हैं और इसका 7वां दर्जा है शहा। तो पहला दर्जा बखिला, दूसरा अमसका, तीसरा अवआ, चौथा अकदा, पांचवा अकना, छठा गन्ना और 7वां है शहा। तो शोह, शोह नफ्स आप पढ़ चुके हैं, तो शोह जो है मैंने आपको जब बनी इसराइल में बुखल के मानी बताए थे वहां भी शोह की तारीफ की थी। तो शोह क्या है, बुखल करना, हिर्स और लालच करना। शोह के अंदर जो है वो दो चीजें पाई जाती हैं, ये बात आपके याद रखने वाली है कि शोह जो है इसके अंदर दो चीजें पाई जाती हैं। दो चीजें क्या होती हैं, एक होता है बुखल और दूसरा है हिर्स। जब दोनों बातें जमा हो जाएं तो उसे शोह कहते हैं। अब जो है वो बुखल किस चीज में करना है कि जो माल मौजूद है ना उसको खर्च ना करना, तो इंसान क्या करता है, खर्च करने में बुखल करता है। तो हिर्स किस चीज में है, हर वक्त माल और दौलत को समेटने की फिक्र करना। तो शोह जो है उसके मानी क्या है, इसके अंदर बुखल और हिर्स जब दोनों बातें जमा हो जाएं तो उसे शोह कहते हैं। और शहीहुन के मानी बखील और हरीस आदमी के हैं, इसकी जमा यहां पे जैसे अशेहतन है, आई है ना, या अशेहतुन, इसके अलावा शिहाहुन भी आती है, शिहाहुन। तो शिद्दत हिर्स और बुखल का मजमुआ जो है वो शोह कहलाता है। फिर आप आइए आयत नंबर 9 में, लफ्ज आया है सलाकूकुम। अच्छा नहीं, यहां पे मिटा हुआ है मेरे पास कुरान में, तो आयत नंबर है 19। आयत नंबर 19 में लफ्ज है सलाकूकुम, सीन सीन लाम काफ, और सीन लाम काफ के मानी होते हैं पानी के बहने की जगह, पानी के बहने की जगह जो है उसके लिए ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। और इसी तरह सिलकातु, ऐसे शख्स को कहते हैं जो जबान दराज हो, जिसकी जबान से अल्फाज बहते चले जाएं, जबान दराज के लिए सिलकातु लफ्ज जो है ये इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा फिर इसके बाद आप देखिए कि सलाक, ये सब मुबालगा है, ये ना फसी और बलीख जो बोलता है ना, जो बहुत अच्छी तकरीर करता है, सलाक ये उसके लिए आता है क्योंकि इसके अंदर शद आ गई। और सिलका तो फाहिशा औरत को भी कहते हैं, तो गोया के अच्छे और बुरे दोनों मानी में ये लफ्ज जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। तो फिर बात का हमें निचोड़ क्या पता चला कि सलक लफ्ज जो है ये हद से बढ़ना, तेजी करना और चढ़ चढ़ कर बढ़ बढ़ कर बोलना, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। और ये मुहावरा है सलाकूकुम बिअलसिनतिन हिदादिन, और अलसिना लाम सीन नून से है, और इसके दो मानी हो सकते हैं। एक तो क्या कि जैसे जो जबान है हमारी, ये जो टुकड़ा है गोश का, लिसान है ना, उसकी जमा भी हो सकती है, और एक बोली, लैंग्वेज, लुगत। तो यहां पे मुराद क्या है, जबाने। और हिदादिन, हिदादिन जो है इसके मानी क्या है, हा दाल दाल से है, हद से बढ़ना। और हा दाल दाल कहते हैं किनारे के लिए भी आता है कि उसकी हद ये है, आड़ के लिए भी आता है, हदीद लोहे को भी कहते हैं। हिदात का लफ्ज जो है वो तेजी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो गोया के सलाकूकुम भी तेजी के लिए है, और यहां पर जो है वो हिदादिन का लफ्ज जो है ये भी तेजी के लिए जो है वो इस्तेमाल हुआ है। तो आप देख लीजिए कि यहां पर अल्लाह ताला ने जो हिदादिन का लफ्ज इस्तेमाल किया है, तो इससे फिर मुराद क्या है कि हद से बढ़ना, तेजी इख्तियार करना। जैसे अब आया है कि जबाने जो हैं वो बहती हैं तुम्हारी हिदादिन की तरह, तो हिदादिन का मानी क्या है कि जबाने तुम्हारी कैंची की तरह चलती हुई आती हैं, और कैंची जैसे उतरती चली जाती है ना, काटती चली जाती है, तो उसके लिए ये लफ्ज जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। आप इस बात को याद रखिएगा कि सला का हद से बढ़ना, ज्याती करना, और ज्याती करना या हद से बढ़ने के लिए कुरान में 8 लफ्ज आए हैं, और सला का छठा दर्जा है। सला का छठा दर्जा है कि चढ़ चढ़ के आना, हाथ या जबान से दूसरे पर ज्याती करना। और दूसरा लफ्ज जो है वो इस्तेमाल हुआ है हिदात का। तो यहां पर जो है, मैं इसकी क्यों आराम से और अच्छे से बार बार आपको वजाहत कर रही हूँ किताब, ताकि आप इसको जो है वो ज्यादा अच्छे तरीके से समझ सकें। तो याद होगी ये बात, और औरतों को तो वैसे भी ज्यादा याद आएगी ये बात समझ में। सलाकुकुम बि अलसनातिन हिदादिन अशेहतन अलल खैर। और अब आप देखें कि अशेहतन अलल खैर, अशेहतन का लफ्ज आया है खैर के लिए, हाँ माल के लिए आया है। तो माल जमा तो करते हैं लेकिन खर्च नहीं करते, फिर हरीस बन जाते हैं। फिर आप आगे चलें तो हमें आयत नंबर 20 में लफ्ज मिलता है बादूना का। बादूना जो है, बादाल वो से है, बदुई और देहाती, या फिर बादूना के माने यहाँ पे क्या है, जैसे बदा आबाद होना, और बद्दू के लिए भी आता है। तो बादल वो बस्ती को भी कहते हैं और आबाद होने को भी कहते हैं। तो बादूना यहाँ पे इस्म फाइल है। आराब जो है ऐन रा बा से है, और ये यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है देहातों के लिए, क्योंकि अरबी या गमार लोग कहाँ रहते हैं, देहातों में रहते हैं।